हिंदी समझती हैं लोग थोड़ी थोड़ी? देखो, तुम्हारे परिवार की संपत्ति क्या है? अर्थ नहीं, संपत्ति है भक्ति, अर्थ सेकेंडरी है। इस चीज को समझना, अर्थ से सुखी नहीं भी हो सकती है, नहीं होगी, किंतु परमार्थिक जो कृष्ण की भक्ति है से जरूर सुखी होगी। इसलिए तुम्हारे परिवार को प्रभुपाद जी ने भक्ति दिया और सब लोगों ने ग्रहण किया। उनकी पत्नी है, क्या नाम है उनका? उनकी पत्नी का बड़े भैया की, देखो कितनी भक्ति जानती है उसको, देखा है ना? वो सब समय डूबी रहती है भक्ति में, उसको फुर्सत नहीं है इधर उधर जाने की। बेटी तुम्हारा भी कल्याण है, हो तुम अपना सब पढ़ो लिखो, सब करो, विवाह शादी हो अच्छी जगह में, किंतु भक्ति मूल चीज है, प्राण है। तुम समझो न समझो, तुम्हारे हृदय में कृष्ण बैठा है, वो सब देखता है, वही सारे संसार को बनाया है, बुद्धि उसने दिया, दिमाग दिया, सुंदर शरीर दिया, भजन के लिए उपयोगी सब कुछ दिया। तो इस पर भी भगवान का भजन नहीं करेंगे? वो इंग्लैंड की डायना का नाम सुना है ना? सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदरी, गुणी, सारा उसका देश इंग्लैंड सब उसको मानता था। क्या हुआ? कुछ जीवन उसका बर्बाद किया। तो इस चीज को समझो, तुम्हारी पैतृक संपत्ति है, परिवार की संपत्ति कृष्ण भक्ति, इसके तरफ में बढ़ना। गले में देखो सब लोगों की तुलसी माला, तुम्हारे गले में भी होनी चाहिए, और कृष्ण कृष्ण ये हरे कृष्ण जपना, इतनी शक्तिशाली है ये, जो विश्व में कोई भी ऐसा शक्तिशाली नहीं है। तुम जो कुछ कहेगी चाहेगी वो सब कुछ हो जाएगा इस नाम के द्वारा। उल्टा नाम जगत जगनाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समान। सीधा राम राम नहीं कर सका, उल्टा किया मरा मरा, देखो जैसे विश्व ब्रह्मांड में पूजित हो गया, भूत भविष्य सब जान गया, जो चाहे वही कर। ये राम नाम जरूर करना है, हरे कृष्ण, जल्दी से जल्दी इस तरफ में अग्रसर हो जाओ बेटी। इंटेलिजेंस भी देगा वो, बुद्धि भी देगा, धन संपत्ति भी देगा, सब कुछ सुख और शांति भी देगा। ये कौन है?
मेरी भाभी।
आपकी भाभी?
न्यूजीलैंड से।
अच्छा अच्छा, आप तो एक बार न्यूजीलैंड गए थे ना कुछ?
हाँ।
जो आपके भाई की मृत्यु हो?
नहीं, मेरा कजन भाई का।
अच्छा
है वो।
ठीक है बेटी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम लोग सुखी रहो जीवन में।
भक्ति चाहते हैं,
बस बेटी बस यही चाहिए, यही होना चाहिए। केवल भक्ति नहीं चाहना है, राधा कृष्ण की भक्ति चाहना है। शंकर की भी भक्ति होती है, हनुमान जी की भी भक्ति होती है, दुर्गा काली की भी भक्ति है, हमको चाहिए शुद्ध राधा कृष्ण की भक्ति। श्रीनाथ जी को जानती है ना? श्रीनाथ जी उनके चरण सुखी रहे। ठीक,
ये मेरा दूसरा भाई की पत्नी है, वो दूसरा कजन भाई की।
ये भी न्यूजीलैंड से
है? न्यूजीलैंड से।
बेटी तुम्हारा भी कल्याण हो और भक्ति के तरफ में बढ़ो, निश्चित रूप में कल्याण। ये सब आप लोगों का परिवार
ये
महाविष्णु के डिसाइपल है। बहुत अच्छा। इनका नाम क्या है? बीरत कृष्ण, बीरज, हाँ ब्रज से बीरज। इसको जानता हूँ, इसके भाई को जानता हूँ, इसके बेटे को भी जानता हूँ।
इसके मामा को भी जानते हैं।
बहुत ठीक, बहुत ठीक। मैं बहुत खुशी हुआ, मैं इसलिए उतर करके आया कि सब लोगों से एक ही साथ में भेंट हो जाएगी। वासुदेव जी भी आए हैं, आपके बड़े भाई भी आए हैं, सब लोग आए हुए हैं। पिछली बार आपके छोटे भाई भी, पिछली बार आपके छोटे भाई भी, क्या हरि भी आए थे यहाँ, उसे भी मिला। केवल कांति नहीं है, कांति कहता है कि वो जगन्नाथ चला गया, मैं नहीं जा सकता, जगन्नाथ को होना चाहिए तब मैं आऊंगा। हाँ, ओह यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, ऑल आर मीटिंग टू मी एंड आई विश दैट दे शुड हैव प्योर कृष्ण भक्ति। ये लोग भी बड़े भावुक लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से, ये बल्कि और तेज हैं। सबके देखिए तिलक, सबके गले में देखो माला, और इतने दूर हो गए, तुम लोग तो निकट के हो, ये लोग दूर के होते हुए भी दे आर सो सो फॉर अवे, बट दे हैव ऑफर्ड एवरीथिंग टू कृष्णा। वेरी गुड। आई वॉन्ट दैट यू शुड ऑल एडवांस मोर एंड मोर, मच मोर। आई वॉन्ट दैट यू शुड ऑलवेज वीप फॉर कृष्ण। ही कैन बी कंट्रोल्ड ओनली बाई टीयर्स विथ हार्ट मेल्टिंग। ये लोग अभी ब्रजमंडल की परिक्रमा हमने दो दो बार की, ये सब लोग गए, 400-500 आदमी गए, एक एक महीना तक रहे। इस बार जगन्नाथ जी भी थी, इनकी पत्नी भी थी, अच्छा लगा।
अगले साल में तो जगन्नाथ जी भी आएंगे, रघुनाथ जी भी आएंगे, कांति जी भी आएंगे, सब लोग
देखो। भगवान ने विशेष करके यह मनुष्य शरीर दिया, स्त्री का शरीर दिया, जो कि इस होल क्रिएशन में सबसे दुर्लभ है। आप लोगों को ये जो मनुष्य शरीर मिला है बड़ा दुर्लभ है। भगवान ने कृपा करके विशेष यह विशेष शरीर दिया। गॉड इज सो मर्सीफुल एंड दैट इज व्हाई ही हैज गिवन दिस फिजिकल बॉडी, मैन एंड वुमेन, दिस शेप। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद में कभी सुकर कुकर हुए और विशेष कृपा करके भगवान ने इसलिए दिया कि आप लोगों के दुखों को देख करके भगवान द्रवित हो, मनुष्य जन्म दिया जाए और ये हमको स्मरण करें, हमको जाने जे मैं उनका अंश हूं और भगवान के बिना सेवा के हम सुखी नहीं रह सकते, इस चीज के लिए दिया। आप लोगों के अंदर में कुछ प्रेम भी दिया है, जो प्रेम कृष्ण के प्रति करने का है वो आपके पास में प्रेम तो दिया, किंतु आप लोग इसका उल्टा यूटिलाइज कर रहे हैं। इसको कहते हैं विकृत प्रेम। जैसे जितने भी पशु हैं, देखिए कुत्ते से लेकर गधे से लेकर घोड़े से लेकर सांप को देखिए, मनुष्य को देखिए, देवता देवी को देखिए, सभी अपनी स्त्री से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जिसको अपना समझते हैं उससे प्यार करते हैं, किंतु कितने दिन के लिए प्यार करते हैं, कितने दिन के लिए? जब तक उनसे स्वार्थ रहता है। अपना बेटा भी यदि अपने लायक नहीं चलता है अपने कहने के अनुसार में, बेटा त्याग कर देता है। पुत्र भी पिता को आजकल गोली मार रहा है प्रेम, किंतु शुद्ध प्रेम नहीं है। भगवान ने इसीलिए जीव के अंदर में ये प्रीति दी, सब कुछ आपके पास में है, दुनिया का जो कुछ है सब कुछ आपके पास में है, किंतु प्रेम नहीं है यदि किसी के साथ में, तो सुखी नहीं रह सकता। धन खाएगा न मान खाएगा, क्या खाएगा? आपको आपने एक लड़की को शादी करके घर में ला दिया और उसको सारे कपड़े गहने रहने के लिए अच्छा भवन सब कुछ दे दिया, किंतु उसे बातचीत मत करो। पति उसे बातचीत प्रेम से नहीं करता है, सुखी रह सकेगी? आप लोग समझ रही व्हाट आई एम टेलिंग? यदि विवाह करके पति घर में लाए और सारी सुविधाएं तुमको दे दे, किंतु प्रेम से प्रीति से बोलता नहीं है, सुखी रह सकती है वो लड़की? चली जाएगी पिता के घर में, या जो प्रेम करता है उसके पास में चली जाएगी। इसलिए संसार में प्रीति मूल चीज है। यही प्रीति भगवान में लगाओ। ये प्रीति तो दो दिन की रहेगी, चाहे प्रीति करे ना करे वो भी मर जाएगा, जो प्रीति कर रहा है वो भी मर जाएगी। इसलिए प्रीति वह अधूरी और खंडित है, मतलब छोटी सी। किंतु भगवान के प्रति यदि प्रीति लगा दो तो भगवान तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। तुम अपनी आत्मा को भी रियलाइज करेगी, आत्मा बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर है। कृष्ण से प्रीति होने पर सारा विश्व उसे प्रेम करने के लिए बाध्य होगा। इसलिए कृष्ण प्रीति के जो प्रतिरूप हैं, मधुर रूप लेकर के, मधुर बंसी लेकर के, मधुर बोली लेकर के, मधुर व्यवहार लेकर के जगत में आए। बस कंस जरासंध जैसे दुष्ट लोगों को छोड़कर बाकी सारे विश्व के जितने प्राणी हैं कृष्ण के प्रति आकर्षित हुए। उनमें कुछ विरोध का भाव था, इसलिए उनके आंखों पर पर्दा था, वो नहीं। किंतु पशु पक्षी कीट पतंग जितने आकाश के मेघ के बादल नदियां भी जब बंसी बजाते थे आकर्षित हो जाती और कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ते थे। भगवान ने वो प्रेम दिया है सब में, किंतु हम उसको शुद्ध करके भगवान के चरणों में नहीं लगाते। इसीलिए भगवान ने ये शरीर दिया। तो जो लोग इसको अनुभव नहीं करेंगे, इसको भगवान के चरणों में नहीं ला देंगे, वो तो दुखी के दुखी रह जाएंगे। फिर गधे घोड़े खरगोश यही सब पैदा होंगे। मत समझिए जैसे बस इसके बाद में फिर हम मनुष्य शरीर रहेंगे और बड़ा सुखी होंगे, ऐसा मत समझिए। वो पीस करके सत्तु कर देगा यदि उसको नहीं भजन किया इस मनुष्य जन्म में। देख रहे हैं सारी सुविधाओं से युक्त रावण, उसकी क्या गति हुई? हिरण्यकश्यप वज्र का शरीर, लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों की आयु, सब धन धान्य से पूर्ण, क्या गति हुई? दुर्योधन समझता था कि सारे राज्य को ले लेंगे, पांडवों को निकाल देंगे, उसका हक भी नहीं दिया, वन में दे दिया, द्रौपदी को नंगा नचाने की चेष्टा किया, किंतु गति क्या हुई? इसलिए खाओ पियो मौज में मत रहो, केवल कुछ साधन करो जिसके अंदर में भगवान है उसको दर्शन कर लें कृष्ण को, तब तो जीवन सार्थक है, अन्यथा नहीं। वी शुड ट्राई टू डू भजन ऑफ कृष्ण। कृष्ण इज गिवन इन ऑल बींग्स लव एंड अफेक्शन। वी हैव लव एंड अफेक्शन विथ चिल्ड्रंस फादर मदर हस्बैंड वाइफ, बट इट शुड बी टेकन एंड इट शुड बी गिवेन टू कृष्ण, देन वी कैन लव ऑल. सो यू शुड ट्राई, मनली यू शुड ट्राई हाउ वी कैन रियलाइज कृष्ण, द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव एंड अफेक्शन. समटाइम्स ही डिसेंड विथ हिज फ्लोट विथ हिज होल एसोसिएट्स वल्ली टू गिव स्पेंकल हिज मर्सी टू. So this life should not be wasted. We should use it. If you will love Krishna, all will love you. तो इस चीज को याद रखिए, संसार में रहिए, उसी जगत की छाया है ये जगत. इसलिए भगवान ने वो सब चीजों को बनाया है. जैसे आप भगवान को पाएंगे, जैसे हम बच्चे को प्यार करते हैं, जैसे हम पति को प्यार करते हैं, जैसे हम ब्रदर को प्यार करते हैं, वही प्यार कृष्ण में देना है. इसलिए इस प्यार को जगत में ठीक रखने के लिए उसको दे करके आगे बढ़ेगा, ये सब दिया है. डूब मरने के लिए नहीं दिया. बिल्लू मंगल चिंतामणि नामक एक वेश्या को बहुत प्यार करता, तो उसने थोड़ी सी ठोकर मारी. हाड़ चाम मांस के शरीर को तू जितना प्यार करता है, सच्चिदानंद में अमृत स्वरूप कृष्ण के चरणों में प्यार करो, तुम्हारा जीवन बन जाएगा. क्या इसको कर रहा है, भीतर में क्या है, टट्टी और मांस पेशाब के अतिरिक्त है क्या इसमें? जब धक्का दे दिया तो बस, जब मुड़ गया कृष्ण के तरफ में, सारी वो जो प्रीति उनको करता था भगवान में लाया, देखो जी आज विश्व में सबसे बड़ा. उसने अपनी आंखें भी फोड़ ली, इस जगत को नहीं देखूंगा. जिन आंखों से कृष्ण को देखा, अंत में ये शरीर छोड़ करके मुक्त होकर के कृष्ण की लीला में प्रवेश कर. यह सूरदास, अब एक फोटो था नहीं है, सूरदास गा रहे हैं और कृष्ण बच्चे बन करके वहां पर सुन रहे हैं.
आप जिस कमरे में सुन रहे हैं?
ठीक, बैठ बैठ. सूरदास भी कृष्ण का रूप देख करके और उनकी उनका उनकी वाणी सुन करके उन्होंने कहा जी अब मैं और कुछ संसार में नहीं देखना चाहता, कुछ नहीं देखना चाहता. तन में रहते थे और भी कितने हो गए हैं जो कि संसार को अब देखना नहीं चाहते. इस जगत का अतिरिक्त एक और जगत है जहां पर केवल सुख ही सुख है. वहां पर आनंद का समुद्र लहराता है. सुखदेव गोस्वामी जी संसार को छोड़कर के ऐसे ही नहीं चले गए. कोई टिक नहीं सकता यदि इसको रोकने की कोई जगह न रहे. इससे भी बड़ा सुंदर वहां है. तब वो नंगे रहते हैं, दिन रात उसकी चिंता करते. हम लोग भी टिके नहीं रहते. देखे जी बहुत से लोग 50-50 वर्ष तक रह करके फिर संसार में लौट के आए ना, कितने. हम लोग टिके हुए किस लिए? थोड़ी सी झलक है उसमें, थोड़ी सी प्रीति है, इसलिए हम लोग बचे हुए. जिसको उसमें प्रीति नहीं रह सकते वो ऐसे नहीं रह सकता सुनने में. इसलिए कृष्ण इतना आनंदमय है कि थोड़ा सा आनंद मिल जाने पर ये जगत सब ऐसा ही हो जाता है. ओ कृष्ण इज सो ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस. इफ ए मैन कैन टेस्ट ए लिटिल बिट ऑफ कृष्ण ब्यूटी, he cannot return to this world. Never. He will not see towards this world. Worldly beauties. So from boyhood, we should try to endeavor for Krishna. मैं बहुत प्रसन्न हूँ. आज का प्रोग्राम क्या है? आज कुछ नहीं रखा है ना, अच्छा किया है। अब तो थोड़ा थक जाता हूँ ना, मर हो जाने से बस थक जाता हूँ, इसलिए विश्राम करके चलूँ तो अच्छा रहेगा।
कल से प्रोग्राम?
कल क्या प्रोग्राम है?
कल शाम को 7 बजे से 9 बजे तक।
कहाँ है? उसका बंगला में इतना सहज स्वभाव के हृदय में प्रवेश कर जाता है। उसी तरह से हमारे जो काव्य हैं, श्रीमद् भागवत है, चैतन्य चरितमृत इत्यादि, उस भाषा में हो ना तो भाव की अभिव्यक्ति होती है। जैसे श्रद्धा, इसके बाद में हुआ रुचि, आसक्ति, प्रेम, स्नेह, प्रणय, अनुराग, ये सब के लिए अंग्रेजी में कोई भी अलग अलग शब्द नहीं है, किंतु है ये सब अलग अलग चीज। इन इंग्लिश व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेम? प्रेम यू नो ओनली वन वर्ड इज लव, अफेक्शन, किंतु अनुराग मैंने वो नहीं है। प्रेम मैंने वह प्रेम जो प्रेम टूटने का कारण उपस्थित होने पर भी और बढ़ता जाता है, उसको कहते हैं प्रेम। समझ रहे हैं? प्रेम टूटने का कारण होने पर भी जो प्रेम बढ़ता है, बढ़ता जाता है और टूटता तो है ही नहीं, उसको कहते हैं प्रेम। कृष्ण राधा जी से बोलना चाहते हैं और राधा जी उनको छोड़ करके चली जाती हैं, हमसे बोलो मत, काले कलूठे अंतर बाहर के, दो चार गालियां सुना करके चली जाती हैं। तो ये प्रेम टूटने का कारण हो सकता है। कोई कोई पत्नी यदि अपने पति को रोज झड़के ऐसे तो क्या होगा ना? तो वो कहेगा कि अरे छोड़ो, दूसरी स्त्री का हम विवाह कर लेंगे, जाओ तुम अपने घर में, कोई मतलब नहीं, टूट जाएगा जितना जैसा भी प्रेम। और वहां प्रेम टूटेगा नहीं और क्या होगा, 10 कदम आगे बढ़ जाएगा, तो हुआ प्रेम। जब यही उसको प्रेमी प्रेमिका को देख करके या प्रेमिका प्रेमी को देख करके, कोई प्रेमी भक्त कृष्ण को देख करके हृदय द्रवित हो जाए, आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगे, तो उसको कहते हैं स्नेह। इसलिए प्रेम और स्नेह एक नहीं है, प्रेम का ही एक ऊंची स्थिति है स्नेह। इसमें हृदय आनंद से भर करके एकदम द्रवित होकर के आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगे। जब कृष्ण मथुरा चले गए हों और बहुत वर्षों के बाद में, 40 वर्षों के बाद में कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए और गोपियां भी ब्रज में 40 वर्ष के बाद में आई, यशोदा मैया आई, उस समय में कृष्ण अपनी यशोदा मैया को देख करके, उनके पास में कुंती, देव की माता रोहिणी और भीष्म पितामह, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग थे, और जिस समय गाड़ी उनकी आई, बैल की गाड़ी कुरुक्षेत्र में, उस समय कृष्ण ने सबको दरकिनारे कर दिया और मैया मैया कह करके एकदम दौड़ पड़े। और मैया क्या कर रही, बेटा बेटा कह करके इतनी जोर से रोने लगी और कृष्ण को अपनी गोदी में संभाल लिया और कृष्ण मैया मैया कर रहे। देवकी करी, आज तक हमको मैया नहीं कहा, हमारा स्तन में से पान नहीं किया दू, और ये यशोदा को अपनी मैया समझ रहा है, मैं इसकी मैया और यशोदा को मैया कह रही। और कृष्ण रो रहे हैं इतना जोर से, उस समय उनकी उम्र करीब करीब 40 वर्ष की हुई होगी और उस समय रो रहे हैं। ये प्रेम स्नेह हो गया, पहले प्रेम था किंतु अब बहुत दिनों के बाद में मिलने पर, जैसे पति और पत्नी बहुत कठिनता में रहे हों, कोई हवाई जहाज था और उसको पाकिस्तानी किसी व्यक्ति ने नेपाल से उसको किडनैप किया और उसमें उसका पति भी था और उसको मारने के लिए सब समय वो कह रहा है, दिखा रहे हैं जैसे मारेंगे मारेंगे, कहां कहां ले गए, सुना था ना, इंडिया के एक जहाज को ले गए, उसमें 180 या कितने आदमी थे, उसमें दो चार केवल मारे गए और बाकी सब सोच रहे थे अब मारे गए अब मारे गए, घर वाले सुन रहे हैं, सबका हृदय धक धक कर रहा है जो अब मारे जाए। और उसे लौट करके घर में जब आया तो क्या हुआ, पत्नी मिली अपने पति से तो एकदम रोने लगे, बच्चे रोने लगे, यह प्रेम से स्नेह हुआ। यही स्नेह जब और बढ़ जाएगा तो समय वो विकृत कुछ टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, प्रेम मान होगा, उस समय राधिका जी को मान में जाएगा कहां, हमला कहेंगे फिर आएगा हमारे पास, इसलिए उसको मान होता है। जगत में क्रोध होता है, रूठना कहते ही है, और वहां क्या होगा, मान और भी आगे बढ़ जाएगा, नए नए रंग में ये प्रेम बढ़ता जाएगा, अनुभव होगा, तो सिर्फ कहते हैं राग, उसके बाद में अनुराग और भी, जिसकी सीमा नहीं, जिसकी मनुष्य जन्म में कल्पना नहीं की जा सकती, वो तो साधन के द्वारा उस स्थान पर पहुंचेंगे। तब से हम लोगों को वही प्राप्त करना है कृष्ण के प्रति, हम जगत के स्त्री पुरुष नहीं है, पति नहीं है, वो आपकी पत्नी नहीं है, आप भी स्त्री हैं, आपकी पत्नी भी स्त्री है, दोनों शक्ति से निकले हुए हैं, आपको ऊपर से पुरुष का जाम कपड़ा पहना दिया गया और उसको स्त्री का कपड़ा पहना दिया है, दोनों एक ही, अभी मालूम होता है जो हमारी पत्नी है और आप समझते हैं कि मैं पति हूं, दूसरे जन्म में हो सकता है कि आप स्त्री हो जाए वो पति हो जाए। रामायण और महाभारत में इसके बहुत से, श्रीमद् भागवत में जो पुरुष बन गया स्त्री, स्त्री इला नाम के ये पुरुष थे और वो बन गई स्त्री, स्त्री बन गया पुरुष, मनुष्य बन गया सिंह, बन गया कोई पेड़, बन गया जमलार्जुन, ये पेड़ बने हुए हैं किंतु थे क्या, नलकुबर मणिग्रीव थे। इसी तरह से जीवात्मा एक जाति है, उसमें स्त्री पुरुष का वैसा भेद नहीं है, किंतु भजन के प्रभाव से इन चीजों को समझ करके कृष्ण ही हमारे सर्वस्व है, इस चीज को अभी तो सब बदलेगा किंतु कृष्ण नहीं बदलेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, मीरा का कोई दूसरा नहीं बदला, बस एक हो गया। तो अभी हम लोग संक्रांति से गुजर रहे हैं, अभी हमारे पति पुत्र ये सब सब चल रहे हैं, किंतु भजन के ये सब फिर टूट जाएगा संबंध, किंतु वो संबंध नहीं टूटेगा और उसी में हम सुखी रहेंगे। और यू शुड ट्रांसलेट टू ऑल आफ्टरवर्ड, बहुत अच्छी बात है, वी आर टॉकिंग सो मच गुड थिंग्स, लव ऑफ कृष्ण। तो आज यहीं तक रहे, और थोड़ा सा मैं चलूंगा ऊपर, आज एकादशी भी है, आप लोग भी हरिनाम करेंगे, जिन लोगों ने हरिनाम नहीं लिया है मैं सबसे अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं आपके कल्याण के लिए, गले में तुलसी लेंगे, मांस मछली प्याज धूम्रपान लहसुन इत्यादि दूर करेंगे और आज से ही हरिनाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम यदि जीवन में सुखी होना चाहते हो। विशेष करके ये सब तो तुम लोगों का परिवार है, देख ही रहे हो वासुदेव जी को, उन भैया उनका नाम क्या है, भैया का मनमोहन, भुवनमोहन, बहुत सुंदर नाम दिया है, जगन्नाथ, जगत जगत के नाथ। इनकी पत्नियां भी ऐसी हैं, इन लोगों से दो अंगुल बड़ी हैं भक्ति में, जगन्नाथ जी की पत्नी कैसी, दो अंगुल और आगे चलती है। अच्छा, हमारे भुवन मोहन जी की पत्नी कैसे, वो पांच आंगुल और आगे चलती है। सब लोगों की उनके संपर्क में जो आया उसको अपने रंग में रंग लेती है, ठीक है, अब से आज से ही तुम लोग हरि नाम कर दो, आज एकादशी है, आज से ही आरंभ कर देना, आज से जरूर हम दो एक माला करें। कितना बज गया?
ग्यारह बज के 10 मिनट।
अब मैं चलू थोड़ा, ठीक है, हमारा सब पर आशीर्वाद है। माय हार्टली ब्लेसिंग्स टू ऑल पावनि वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावतन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषये नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्मी क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयीं त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते यं ब्रह्मव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयम् तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति देख्याय राधे तन्नय मां चरणार्थिके। बोलता हूं ट्रांसलेशन कोई तुम लोग कर देना, हियर आई एम गोइंग टू स्पीक इन हिंदी बट ट्रांसलेशन विल बी डन, सम टाइम्स आई विल स्पीक इन इंग्लिश आल्सो, टुमारो इन मॉर्निंग यू कैन कम इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। किसी समय नारद जी द्वारका पधारे, जिस समय द्वारका में पधारे उस समय तुम भी बैठी बैठ करके सुनो, सब लोग सुनना। द्वारका में जब आए तो वहां पर बड़ा भारी यज्ञ चल रहा था, हजारों विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में स्वाहा स्वाहा की ध्वनि चारों तरफ आकाश में घूम रही थी और आकाश भी आग और धुएं के घी के धुएं से सुंदर चारों तरफ फैल रहा था, वातावरण सब निर्मल हो रहा था। जिस समय यज्ञ बीच में था उसी समय आकाश में एक ज्योति पुंज दिखाई पड़ी। मेरी हिंदी कठिन तो नहीं है, समझ में आ रहा है? आ रहा है सब? ज्योति एक दिखाई पड़ी, लोगों ने सोचा जी सूर्य से कोई अंश टूट करके गिर रहा है, बहुत ही चमकीला, डरे जो सूर्य का कोई खंड गिर रहा। धीरे धीरे वो जब नीचे आने लगी, जब बहुत निकट आ गई ज्योति, अरे देखा जी इसे तो कोई आदमी है। फिर नीचे जब और भी आ गई देखा तनाद ऋषि है, पीना लेकर के उतर रहे हैं। नीचे उतरे वसुदेव महाराज जी जो कृष्ण के पिताजी थे, उन्होंने कहा यज्ञ बंद कर दो, अब यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, यज्ञ का फल साधुओं का संग साधुओं का दर्शन ये तो साधु खुद आ गए, अब यज्ञ करने की क्या जरूरत है, उस समय यज्ञ की कोई जरूरत नहीं है। तप दान इत्यादि जितने भी धर्म है साधु संघ सबका मूल तात्पर्य है। यहां तक कि भगवान का दर्शन भी सुलभ हो जाता है यदि वैष्णव का दर्शन हो गया, और भगवान से भी दयालु उनके भक्त लोग होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। यज्ञ बंद हो गया और महाराज वसुदेव जी नारद जी के चरण पखारे, जो कृष्ण के पिता है, और पखारने के बाद बोले, ओह नारद जी, आज मेरा जन्म सफल हो गया। कृष्ण उनके घर में हैं, उसके लिए जन्म सफल नहीं मानते। मान रहे हैं किसके लिए? कृष्ण का सबसे प्यारा कोई भक्त आ गया तो उसके लिए मान रहे हैं। दुर्लभो मानुषो देवो देहो देहिनां क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। कोटि कोटि जन्मों के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है, क्षण भंगुर है। मनुष्य जन्म अधिक नहीं चाहता, अधिक से अधिक 100 वर्ष, और उसमें भी सोने में चला गया था, कुछ पढ़ने में चला गया, कुछ बुढ़ापे में चला गया। मुश्किल से 10-20 वर्ष बचता है, वो भी विवाह शादी कर घर बनाना, वाणिज्य व्यवसाय करना, बच्चों का पालन पोषण करना, वो भी चला जाता है, तो भजन कब करेगा? उसमें भी तत्रापि दुर्लभम, किंतु उस मनुष्य जन्म में और भी दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शन। भगवान का यदि कोई प्रिय व्यक्ति मिल जाए, दर्शन मिल जाए, समझो जी हमारा परम सौभाग्य है। और मनुष्य जन्म में कोई साधु संत नहीं मिला, शुद्ध शुद्ध साधु संत को मिलना बड़ा भारी कठिन है। मिल जाए तो समझो जैसे आज हमारा जीवन सार्थक हो गया। हमारा कल्याण कैसे होगा? उनसे उन्होंने पूछा, हमारा कल्याण कैसे होगा? शंकर के देवर्षि नारद मनी मन में सोच रहे हैं, मैं जिनके दर्शन करने के लिए यहां आया, जिस कृष्ण का, और कृष्ण इनका बेटा है, दिन रात इनके घर में रहता है, तो उसके दर्शन से इनका जन्म कृतार्थ नहीं हुआ, और मैं उनका एक प्रभु का दास का दास का दास, और हमको दर्शन करने से इनका जन्म सफल हो गया। बात एक ठीक ही है, बात कुछ ठीक ही है। यूसुफ ट्रांसलेट बिकॉज यू कैन एक्सप्लेन।
वंस श्री नारद मुनि ही केम टू द्वारका, एंड इन द्वारका एट दैट टाइम big sacrifice was going on under the guidance of Vasudev Maharaj, and the big sacrifice was being attended by thousands of learned brahmanas, and they were doing it with all proper Vedic rituals. The smoke from the yajna fire was spread throughout the universe, and it was purifying the whole atmosphere. At that time, all of the participants, they witnessed that from the sky there was a big light coming, light flame. It was so much radiant that they could not see it. So they were thinking what it is. Then they thought it might be a portion of the sun which is broken and is coming down. So they were fearing also. But as that ball of light, fire, was coming down, it was becoming more clear. Then they noticed that actually there was some man, shape of man was noticed in that ball of fire. And when it came more down, then it was very clear that the personality in that radiance was Sri Narad Muni. He was so radiant, the pure devotee of the Lord. When Vasudev Maharaj, he noticed Sri Narad Muni has arrived, he instructed to all the brahmanas to stop doing the sacrifice. He said that now the fruit of our sacrifice has come, so there is no need for doing any more yajna, because sadhu sangh is the essence of all religious activities. whether austerities, charity, or finances, whatever one may perform, the highest result of any religious activity is sadhu sangha. And especially the verse says, durlabho manusham deham, that this human life is very, very rare. By Krishna's grace, His causeless mercy, those who are fortunate, they receive this human form of life. And within that human form of life, it is more difficult to get the association of Shuddha Bhakta, pure devotees of the Lord. Because when we are in the human form of life, we are engaged in so many activities which are adverse to pure devotion or to bhakti. First 20 years we are engaged in studying, playing, doing so many things. The last part of life we are old and we are struggling with diseases. And in the middle part we are busy making so many arrangements to live peacefully or happy. So in all this endeavor, where there is time that we can think for a while or peacefully we can sit down and do bhajan. So even in that, if one is able to get the association of pure devotees, then that person must consider himself to be the most fortunate, and he must have full faith that his life is successful now. There is nothing more lacking in his life. He has achieved the result of the human form of life, and that is sadhusanga. So when Shri Narad Muni came, Vasudev Maharaj stopped the yagya, and with great honor he bathed the lotus feet of Shri Narad Muni, doing all the performance with different water auspicious stava and glorification. Then very humbly he inquired from Shri Narad Muni that, O great sage, please tell me, how can I achieve my eternal benefit? What is beneficial for me? Then Shri Narad Muni, he was in mind, he's thinking and he's smiling. He said, oh, I'm coming to take the darshans of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. I'm wandering throughout to serve him, to take his darshans, and that very personality of Godhead is here in the house of Vasudev Maharaj as his son, and day and night is performing so many wonderful pastimes. Yet Vasudev Maharaj is not considering his life to be successful. Only upon seeing me, he's feeling that his life is successful. What a strange thing. And then again, second thought came to his mind, and he said, yes, yes, this is true. This must be true.
जो संत हमारे घर में आए हैं, वो संत कैसे हैं? नारद जी ऐसा क्या उन्हीं के लाइन में हो? संत किसको कहते हैं? इसको खूब बखूब अच्छी तरह से समझिए, नहीं तो चीटिंग के फेर में पड़ जाएंगे। ब्लफर्स के, जो ब्लफ देते हैं, चीटिंग करते हैं जगत को, शुद्ध भक्ति नहीं है। जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उनके फेर में पड़ जाएंगे। उसे सावधान रहना चाहिए। इसलिए भक्तों को भी समझना चाहिए ये भक्त कौन है। ऐसे अंधविश्वास से नहीं चलता, समझना चाहिए। समझेंगे कैसे? पूर्व जन्म की सुकृति हो तब तो उत्कंठा होगी समझने की, जो ये साधु है कि नहीं है। ऐसे नहीं हो जाएगा। पूर्व जन्म की कुछ सुकृति होनी चाहिए, या इस जन्म में कुछ सुना हुआ हो। इसलिए शुद्ध भक्त को समझने के लिए, शुद्ध भक्ति को समझने के लिए ये समझना जरूरी है। ये भक्ति किसको कहते हैं, किसमें ये भक्ति है? नारद जी में शुद्ध भक्ति है, प्योर भक्ति है उनमें। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अद्यनाप्रतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। पहले भक्ति का डिफिनेशन समझिए। ये भक्ति किसको कहते हैं? ठाकुर जी के चरण में दो पुष्प चढ़ा दिए और चढ़ा करके बोले, हे ठाकुर जी, हमारा बेटा हो जाए और हमारा परिवार सब सुखी रहे, आप अनुग्रह कर दीजिए। ये भी एक तरह की भक्ति है, किंतु शुद्ध भक्ति नहीं है। ये भी एक भक्ति है किंतु शुद्ध है नहीं है। ये कोई कोई प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी को, सब सेवा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भागवत अर्चन कर रहे हैं, प्रीचिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किंतु उनके अंदर में बहुत सी कामनाएं वासनाएं संसार की भोग करने की है। बहुत सी वासनाएं ऐसी हैं, कामनाएं ऐसी हैं जो वो स्वयं संसार में जो गृहस्थ लोग भोग करते हैं उसको भोग करने की लालसा है। इसलिए भगवान की उपासना भी अपने भोगों के लिए चाहते हैं। आ रहा है समझ में? समझने की चीज को भगवान का भजन भी करते हैं किंतु किस लिए? हमको जगत में सुखी रहने के लिए धन जन पुत्र परिवार सब कुछ हमको मिल जाए, इसके लिए भगवान का भजन करते हैं। ये भी भक्ति नहीं है। भगवान की उपासना तो करते हैं किंतु किस लिए? हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, हमको 10 शीर दे दीजिए और हमको ऐसा शरीर दे दीजिए कभी रोग ना हो, मैं मरूं नहीं, और सबसे सुंदर जो विश्व में लड़की है वो हमको मिल जाए और बहुत अच्छे लड़के हो जाए। भगवान की उपासना तो वो भी करता है किंतु किस लिए किया? अपने लिए किया, भगवान के लिए नहीं किया। ये भक्ति नहीं है। अन्ना भिलाषिता शून्य, भगवान की सेवा के अतिरिक्त जितनी प्रकार की अभिलाषाएं हमारे हृदय में है उसे रहित होना चाहिए। इस जगत में यह शरीर रहते हुए यह असंभव है, बहुत कठिन है। बिरले व्यक्ति ऐसा कर सकता है, हो सकता है, किंतु बिरले व्यक्ति यदि साधुओं का संग हो जाए तो आंख में अंगुली देकर वो सबको समझा देगा जी ये ठीक नहीं है भक्ति, ये भक्ति नहीं, ये अन्नाभिलाषिता है, ये अन्नाभिलाषिता है, ये समझा देगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब उदाहरण के लिए एक उदाहरण समझिए। भरत जी, रामायण आप लोग तो जानते होंगे, भरत जी जब अपने ननिहाल से आए मामा के यहां से तो बड़े दुखी हुए, अयोध्या को विधवा के समान देखा, कुकुर श्याल सब रो रहे हैं और चारों तरफ में शोक उमड़ रहा। राम भी सीता जी और लक्ष्मण को लेकर के वन चले गए हैं, वनवासी का वेश धारण कर। अयोध्या के लोग भी, अधिकांश लोग कुछ चले गए हैं, रामचंद्र जी के साथ में वो चित्रकूट के पहले तक कोई स्थान था वहां तक चले गए हैं। सुनी अयोध्या पड़ी है, जो है भी वो भी रो रहा, कुत्ते तक भी रो रहे हैं, पशु पक्षी तक रो रहे हैं, घोड़े तक भी रो रहे हैं, मनुष्यों की तो बात करें। जब वो आए तो कैकेयी ने बहुत आदर किया और बेटे को अपने गोद में लेकर के अंग भर लिया और प्रेम से रोने लगे। भरत जी ने प्रश्न किया, मैया अरे तुम्हारे शरीर में सिंदूर नहीं देख रहा, ये क्यों? पिताजी कहाँ गए? पिताजी तेरे चले गए परलोक में। भैया कहाँ है? राम तो वन में गए। लक्ष्मण इको नहीं देख रहा, नहीं तो जरूर दौड़ करके आते। लक्ष्मण कहाँ है? वो तो राम के साथ वो भी गए। सीता कहाँ है? वो भी राम के साथ पूछी। क्यों? तो सब कुछ तेरे लिए, सब तेरे लिए मैंने किया। जो तुम्हारा राज्य अक्षय हो इसलिए राम दशरथ जी से मांगा, अपने पति से राज्य मांगा और उन्होंने राज्य दे दिया और बोला मैं कि तुम्हारा राज्य अचल हो इसलिए वो 14 वर्ष तक उसके लिए वनवास हो, जब आएगा भी तो कौन पूछेगा उसको, 14 वर्ष में प्रजाओं को मन जीत करके ठीक रहे, इसलिए मैंने ऐसा वो हमारे लिए मांगा। जाओ तुमको आज छोड़ देता हूं, मैं मारता नहीं, आज तुमको मैं अपने हाथों से काट देता, तुमने भैया को राम को राज्य दे दिया, पिताजी तुम्हारे लिए परलोक में चले गए, आज से तुम्हारे और हमारे माता और पुत्र का संबंध खत्म, भूल से भी तुम हमको बेटा मत कहना और हम भी भूल से भी तुमको माए मैया नहीं कहेंगे, बोल जाओ। और तुम क्या समझती हो, मैं राज्य ले लूंगा, मैं अभी जाता हूं सारी प्रजाओं के साथ में, वशिष्ठ जी और माताओं के साथ में राम को लौटा करके ले आऊंगा, जहां भी हूं। सुना है जो वो चित्रकूट में पहुंचे हैं सब बुलाऊंगा, ये कह करके चित्रकूट के लिए यात्रा की, सबको साथ में लिया। अब ये भी रोने लगी कौशल्या के पास में, ये क्या रोने लगी, हमको भी ले चलो, मैं यहां पर रह नहीं सकती, तुम्हारे लिए मांगा राज्य। कौशल्या मैया के यहां गई, जैसे मैया तो मेरी बहन तुम हमको दया करके अपने साथ ले चलो, भरत नहीं ले जाएगा। कौशल्या बड़ी दयालु, उन्होंने भी कहा अच्छा तो चलो, किस लिए जाना चाह, जब बेटा ने राज्य ही नहीं लिया तो ये राज्य की जरूरत क्या रही, मैं राम से कहूंगा जी आपने मैंने जो मांग की थी वो लौटा, तुमको अब राज्य छोड़ने की जरूरत नहीं, 14 वर्ष बाद वनवास की भी जरूरत नहीं, और भरत के राज्यों के लिए मांगा था वो भी लौटा लूं और राम को ले आऊंगा मैं, इसलिए वो भी चलना चाह। सब लोग चित्रकूट गए, भरत जी चित्रकूट पहुंच करके राम से मिले, पिताजी के स्वर्गवास का खबर सुनाया, सबने मिल करके उनको अंजलि दिया, जो कुछ वहां पर हो सकती है पिता के लिए संस्कार किया, उनका जो पिंडदान इत्यादि वहां पर किया, करने के बाद में ये अपने मन की बातें राम से कहना चाहते हैं, जब तुम चलो बड़ा भैया राजा होता है, मैं छोटा भैया हूं, आप ही को राज्य करना है। वो सबसे पहले कौशल्या मैया के हैं, मैया तू राम से कह दे तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बात जरूर मानेगा, ये तुम लौट चलो और राज्य वहां का करो। मैया ने कहा जी मैं कैसे कर सकती हूं, मैं नहीं कहूंगी, क्यों मैं गलती में हूं, नहीं गलती में तुम नहीं है, बात ठीक है, तुम बात निस्वार्थी तू है, कोई स्वार्थ नहीं, किंतु मुझे तो पिता और माता दोनों ने मिलकर के हमको आदेश दिया है, तो केवल अब तुम्हारे आदेश से मैं कैसे जाऊंगा, ये कहेगा राम, इसलिए मैं नहीं कर सकती, और राम भी तो ठीक ही कह रहा है, तुम उसको कैसे आदेश। भरत ने बहुत चेष्टा की कि मैया कह दे तो उसकी बात मान लेंगे, किंतु वो राजी नहीं हुई। वशिष्ठ जी के यहां गए रात ही में और जाकर उससे अनुरोध किया जी महाराज आप हम लोगों के गुरु हैं, राम जरूर आपकी बात मानेगा, मैं भी आपकी बात मानता हूं, तो आप राम से कह दीजिए जो अयोध्या लौट आए। कहा जी मैं तो नहीं कर सकता ऐसा, क्यों नहीं कर सकते, मैं क्या धर्म की बात कर रहा हूं, नहीं तुम अधर्म की बात नहीं कर रहे, मैं जानता हूं कि तो राम भी तो अधर्म की बात नहीं कहता, पिता माता ने उसे आदेश दिया है, उस आदेश को पालन करने के लिए जा रहा है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। फिर हाँ एक बात है, ऐसा तुम कर सकते हो कि उसके बदले में तुम वन में जाओ, यदि वो स्वीकार करता है तब वो लौट सकता है, मैं कहूंगा ये ऐसी स्थिति में वो लौट जाए, यदि भरत चला जाए, भरत और शत्रुघ्न चले जाए और उसके बदले राम ना तो चला आएगा, ऐसा तो कर सकता। तो भरत जी बड़े प्रसन्न हुए, यदि ऐसी बात है तो मैं चला जाऊंगा राज्य, मैं वन में चला जाऊंगा और राम लौट जाए, किंतु यदि वो नहीं माना तो यदि नहीं माना तो मैं नहीं कर सकता जबरदस्ती लौटने के लिए। फिर जब ये नहीं माने तो गई जनक की स्त्री, मैंने सीता जी की मैया सुनैना आई थी, और महाराज जनक बड़े विद्वान, बहुत उच्च कोटि के तात्विक व्यक्ति और भक्तिमान, उनके पास सुनैना के पास में जाकर के बोले, मैया तेरी बेटा बेटी सीता जी है, जंगल में उसको कितना कष्ट होगा, अब तुम्हारे जमाई भी हैं, तो तू नहीं चाहती कि रामचंद्र जी जंगल में न जाए, वन में न जाए, सीता न जाए? मैं तो चाहती हूं। तो फिर क्यों नहीं कहती महाराज जनक से वो आदेश दे दें, इस समय जनक ही हम लोगों के सबके पिता हैं और गुरु भी हैं, हमारे कुल के वही एकमात्र हैं व्यक्ति जिसकी बात राम मान सकता है, तो तुम महाराज जनक से कहो, अपने पति से, जो वो उनसे कहें आदेश दे दें, अयोध्या मर रही है, महाराज दशरथ चले गए, कोई देखने वाला नहीं है, और पिता का बड़ा बेटा राजगद्दी पर बैठता है, इसलिए लौट करके जा करके राज्य संभाले। उन्होंने कहा, जी महाराज दस उनको मैं तत्व ज्ञान की बातें नहीं समझा सकती, हमारे पति हैं, फिर भी मैं कहूंगी जैसा होगा मैं कहूंगी। दशरथ अर्ज जी चारों तरफ में देखा, मैं बात ठीक कर रहा हूं, कितना त्याग कर रहा राम को लाने के लिए, और धर्म की बात मैं कहता हूं, किंतु हमारी बात कोई नहीं समझता, राम नहीं, राम भी नहीं समझता, कौशल्या नहीं समझती, वशिष्ठ जी नहीं समझते, कोई भी नहीं समझता, मेरी बात में मेरी व्यथा कहां है। सवेरा हुआ, वशिष्ठ जी ने बड़ी भारी सभा बुलाई, जितने अयोध्या से नागरिक आए थे उनको सभा में बैठाया, 88,000 ऋषि चित्रकूट में थे जो तपस्या कर रहे थे, बड़े बड़े विद्वान, घर बार छोड़ करके रहने वाले, धर्म तत्व को समझने वाले, उनको एक तरफ में बैठा दिया, एक तरफ में मैया तीनों बैठी, और बीच में बैठे ये महाराज जनक और वशिष्ठ जी पास में बैठे, इधर में राम लक्ष्मण जी बैठे, और इधर में भरत शत्रुघ्न जी बैठे, बड़ी अच्छी सभा हुई। सबसे पहले कैकेयी जी ने उठ करके कहा, राम से कहा और सभा के सामने कहा, मेरे आदेश से राम वनवास के लिए आया है, सीता जी और लक्ष्मण जी भी वनवासी का वेश धारण करके आए हैं, अब मैं बहुत अनुतप्त हूं, इसलिए मैं अपनी बात लौटा लेती हूं, अब ये राम लक्ष्मण और सीता के साथ में अयोध्या में पधारे और वहां पर राज्य करें, मैं नहीं चाहता कि वो जंगल में जाए। राम उठ करके सब सभा को प्रणाम करके और सबको प्रणाम करके मैया कैकेयी को प्रणाम किया और बोले, क्या मैया तू कहती है ठीक, किंतु उसमें महाराज थे, महाराज से तुमने मांगा था और महाराज जी मौन थे, मौनम सम्मति लक्षणम, इसलिए उसमें महाराज जी की भी इच्छा थी, उन्होंने कहा था जब वन में जाओ वन से लौट करके फिर आ जाना, आदेश दिया था, और उसमें तेरी भी सम्मति थी, तो दोनों को माता पिता दोनों की सम्मति से मैं आया, अब पिताजी तो है नहीं, तुम अकेली आधी कह रही हो, इसलिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन जाय, प्राण चला जाएगा किंतु हमारे रघुकुल की ये रीति है, धर्म से विपरीत हम नहीं जा सकते, जो कह दिया वो परम सत्य है, पिताजी ने जो कहा वो जरूर हमको करना चाहिए। कहते ही चुप हो गई। इसके बाद में वशिष्ठ जी ने कहा, देखिए आप सभा लोग, सभा के लोग, महाराज दशरथ के जाने के बाद में महाराज जनक ही अयोध्यापुरी की और जनकपुरी के महाराज हैं, सबके माता पिता गुरु हैं। मेरी समझ से इनकी बात माननी चाहिए सब लोगों को। भरत तुम इनकी आज्ञा पालन करेगा तो जरूर, राम तुम इनकी आज्ञा का पालन करेगा तो जरूर करेंगे, जैसा आदेश देंगे हम पालन करेंगे दोनों से। और तब महाराज जनक से बोले जी आप तो निष्पक्ष व्यक्ति हैं, धर्म तत्व का निगूढ़ भाव आप जानते हैं, आप विचार करके जो अच्छा हो उचित हो धर्म के नीति के अनुसार में हो आप ऐसा आदेश कुछ दीजिए। इस समय अयोध्या की नाव डगमगा रही, इसको आप ही स्थिर कर सकते। महाराज जनक जी सभा को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, अपने गुरु को प्रणाम किया। गुरु है कौन? भगवान शंकर इनके गुरु हैं। वैष्णव में जथा शंभु, वैष्णवानंद यथा शंभु, वैष्णव के गुरु हैं, इसलिए वैष्णव उनको सब समय गोपेश्वर के रूप में दर्शन करते हैं। बिना उनके आदेश के ब्रज प्रेम नहीं मिल सकता। अपने गुरु को प्रणाम किया, ध्यान किया और तब बोले हमारे गुरु जी जैसा बुलाएंगे, भगवान जैसा बुलाएंगे, मैं वैसा ही कहूंगा। मैं समझता हूं कि दोनों पालन करने के लिए बात है। फिर बोले देखो मैं विचार करके देख रहा हूं, भरत में राम के प्रति अगाध प्रेम है, उसका थाप पाना मुश्किल है। उसका प्रेम ऐसे है जैसे पैसिफिक ओशन है, इतना गहरा, कम से कम 9 मील 10 मील से इसका तो थाह है, और भरती के प्रेम समुद्र का कोई थाह नहीं है। और दूसरी तरफ में राम का धर्म तत्व है। राम कैसा है? हिमालय के समान, हिमालय में चोटी एक बड़ी है एवरेस्ट, वो कितनी मील ऊंची है? अब तो 31,000 के करीब है, करीब करीब 7 मील से भी ऊंचा अधिक। तो राम का जो धर्म है हिमालय है, वो भरत के प्रेम रूपी समुद्र में डूब जाएगा, यह बात ठीक है। किंतु डूबने पर भी वो कैसा रहेगा? हिलेगा नहीं इधर उधर, डूब जाएगा प्रेम में, किंतु डूब करके अपना अस्तित्व नहीं खोएगा। वो कैसा रहेगा? अटल रहेगा। मतलब ये भरत में राम के प्रति अगाध प्रेम है, और राम में है मर्यादा, धर्म की मर्यादा, मर्यादा हिमालय के समान ऊंचा है। प्रेम में मर्यादा कुछ नहीं रहता है, जहां प्रेम होता है वहां पर मर्यादा टूट जाती है कि प्रेम